जप का भी वर्णन है और कीर्तन का भी वर्णन है। भगवद गीता में जप का वर्णन कहाँ है? 10वें अध्याय में यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। जितने भी यज्ञ संसार में किए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ क्यों किया जाता है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो सारे यज्ञों में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जप मेरा विभूति है, अथवा उसको देखकर मेरी लोगों को याद आ जाती है। तो जप करना महान यज्ञ भगवान ने माना है। और कीर्तन कहाँ है भगवद गीता में? सततम कीर्तनयन्तो माम यततंश्च दृढ़व्रताः। जो निरंतर कीर्तन करते हैं, इसका अर्थ प्रभुपाद ने एक अद्भुत लिखा है भागवत में कि इस सततम का अर्थ ये है कि इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी। इस जन्म में जब तक जीते हैं तब हरे कृष्णा जपते हैं, जब गोलोक जाएंगे तब भी हरे कृष्णा जपेंगे। तो ये लक्ष्मी जी की प्रार्थना है, ये भागवत में लक्ष्मी जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके मंत्र का जप इस जीवन में और अगले जीवन में भी। इसका अर्थ है कि यहां भी भगवान के नाम का जप करेंगे, जब भगवत धाम जाएंगे तब भी भगवान के नाम का जप ही करेंगे, उधर भी यही करना है। और प्रभुपाद जी इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि आम तो आम होता है, कच्चा होता है तो भी आम कहते हैं, और पक जाता है तो रसीला होता है तब भी आम कहते हैं। इस संसार में जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो कच्चे आम की तरह होता है, कभी खट्टा लगता है, कभी मन करता है, कभी नहीं करता है, लेकिन भगवत धाम जाके जपेंगे तब यही आम पक्का रसीला हो जाएगा और वहां जप करने में बड़ा रस आएगा। तो आम आम ही रहेगा, लेकिन आम कच्चे से पक्का जैसे होता है, ऐसे संसार में जप थोड़ा सा कच्चा होता है, लेकिन भगवत धाम जाके ये कच्चे और पक्के के लिए पहले स्कंद भागवत में नारद जी को भगवान ने दर्शन तो दिया, उन संतों की कृपा से जिनका प्रसाद उन्होंने खाया, उनकी आज्ञा से सेवा किया, और फिर भगवान ने दर्शन को छुपा के ऊपर से क्या आकाशवाणी ने कहा, अभी तुम कच्चे हो, तुम कच्चे हो अभी, इसका मतलब आम कच्चा है, तुम्हारा जप अभी तक यहां कच्चा है, इसको करते रहो, अब इस जन्म में तुम्हें ये दर्शन नहीं मिलेगा, और फिर दूसरे जन्म में नारद अब जो जप कर रहा है वो पक्का है, अब भी नारद वही जप कर रहा है, उसी भगवान के नाम का जप कर रहा है जो पहले कर रहा था, लेकिन अब सिद्ध अवस्था में कर रहा है, अब उसका जप जो है वो पक्का है, पहले कच्चा था। तो जप हाँ क्या है, पहला क्या है, कीर्तन, भगवद गीता में कीर्तन भी है और जप भी है। तो जप और कीर्तन दोनों आ जाते हैं भक्ति के पहले अंग में। दूसरा क्या पंचांग भक्ति में, दूसरा क्या अंग है भक्ति का महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार? श्रीमद् भागवत के शब्दों के अर्थ का रसास्वादन करना, रोज श्रीमद् भागवत के शब्दों के अर्थ का रसास्वादन करना चाहिए। और फिर महाप्रभु कहते हैं भागवत को सुनना चाहिए भागवत पुरुषों के संग में, जहां भक्तों का संग हो वहां भागवत को श्रवण करना चाहिए। तो दूसरा अंग पंचांग भक्ति में क्या हुआ? भागवत का श्रवण। तीसरा अंग क्या है? हाँ, उसके लिए शब्द लिखा है श्रद्धाया श्री मूर्ति है पूजा, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना। जो भगवान के श्री विग्रह की पूजा है श्रद्धा के साथ करना, ये भक्ति का तीसरा पंचांग भक्ति में अंग है। कि घर के अंदर भगवान का विग्रह हो, या अपने मंदिर में भगवान का विग्रह हो, या भगवान का चित्र हो, पट हो, ये पंचरात्र विधि के अनुसार अर्चा विग्रह के रूप में भी भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। पंचरात्र विधि में एक तो भगवान है जो गोलोक में रहते हैं, एक भगवान अवतार लेके आते हैं, ऐसे एक भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। ये पंचरात्र विधि के अनुसार भगवान का ठाकुर जी का अर्च विग्रह के रूप में प्रकट है, और इसकी प्रेम से पूजा करना, उसमें श्रद्धा शब्द मुख्य है। पूजा तो सब मंदिरों में होती है, घंटी सब जगह भक्ति बजती है, लेकिन श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा या श्री मूर्ति पूजा, श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना। चौथा क्या अंग है पांचांग भक्ति का? धाम में वास करना। धाम में वास में आप सब भाग्यशाली हैं कि वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं। वृंदा धाम मन धाम में वास हो तो ये धाम में वास का एक अर्थ है। दूसरा धाम का अर्थ ये कि जहां जहां भगवान के मंदिर स्थापित हैं वो भगवान का धाम माना जाएगा। जहां गौर निताय है वो नवदीप धाम है, जहां राधे श्याम है वो वृंदावन धाम है, जहां जगन्नाथ जी है वो जगन्नाथपुरी है। तो ऐसे भगवान के मंदिर का स्थान जो है वो भी धाम के समान है। तो पूरे विश्व में जहां भक्त मंदिरों में रहते हैं वो समझे धाम में रह रहे हैं, फिर भी धाम का एक विशेष प्रभाव होता है। वो तो मंदिर में रहेंगे तब तक धाम में, मंदिर से बाहर निकलेंगे तो धाम से बाहर हो जाएंगे। वृंदावन में मंदिर में है या मंदिर से बाहर है फिर भी ये धाम है। ये तो 84 कोसी पूरे का पूरा धाम है, तो फिर भी इसका अपना महत्व है। पांचवा कौन सा अंग है भक्ति का, पंचांग भक्ति में? भक्तों का संग। क्या है? भक्तों का संग। तो हमेशा भक्तों के संग के लिए लालच होनी चाहिए, लोभ होना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा लोभ खराब है, लेकिन अच्छा लोभ है भक्तों के संग का, भगवान की कथा सुनने का और भगवान के नाम जपने का। ये तीन लोभ अगर जीवन में हो जाए तो आदमी धनी हो जाएगा। कौन सा धन मिलेगा उसके? गोलोकेर प्रेम धन उसको मिल जाएगा। उसको उसका धन कौन होगा? अकिंचन वित्ताय। ऐसे भक्तों का वित्त या धन होता है भगवान। तो भगवान किसको मिलते हैं? जो भगवान के भक्तों का संग करता है। भगवान के भक्तों की संग की महिमा भागवत में इतनी अद्भुत है कि भगवान के भक्तों का संग मिल जाएगा तो क्या होगा? तो भगवान की कथा मिलेगी। भगवान के भक्तों के संग का लाभ क्या है? भगवान की कथा। भगवान की कथा का क्या लाभ है? हृदय की शुद्धि। यह भगवान की कथा से हृदय शुद्ध होता है। कैसे हृदय शुद्ध होता है? भगवान की कथा से भगवान भक्त के हृदय में जाके हृदय को धोके साफ कर देते हैं। तब क्या होता है? तब भगवान में आसक्ति हो जाती है, तब भगवान में प्रेम हो जाता है। तो भक्तों के संग से, भगवत कथा से, हृदय की शुद्धि होने से भगवान से प्रेम होता है। और जब भगवान से प्रेम होता है तो फिर संसार से अपने आप वैराग हो जाता है। तो वैराग करने की जरूरत नहीं है, शुष्क वैराग, वैराग करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। भक्तों के संग में जुड़ने से संसार अपने आप छूट जाता है। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भक्तों के संग की। और ये प्रार्थना अन्य वर्षों के अंदर जो जो देव है वो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अद्भुत, ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा आपके भक्तों का संग मिल जाए तो हरि कथा मिलके हृदय शुद्ध हो जाता है, आपसे प्रेम होता है, संसार से वृत्ति हो जाती है। और आपकी अगर संग आपका नहीं मिला तो संसार का संग तो पहले ही गले पड़ता है, फिर घर गृहस्थी पुत्र परिवार धन दुकान मकान में ऐसा फंस जाता है कि मानव जन्म के लक्ष्य भोग को भी आदमी भूल जाता है। इसलिए भगवान आपके भक्तों का संग मिले, ये मेरी प्रार्थना है। अच्छा, इस पांच अंग भक्ति में इन पांचों में से सबसे मुख्य क्या है? हाँ बोलो मां। जप करना। हाँ, साधु संग। साधु संग जप, भागवत कथा सुनना, वो तीन चीजें हैं। बहुत भक्त का प्रसाद, भक्त के चरण का धोया हुआ पानी, भक्त के चरण की रज, ये भक्ति के लिए बहुत सहायक है। तो मुख्य क्या हो गया? भक्तों का संग। भक्तों के संग में बैठ के जप करना, भक्तों के संग में भगवान की आराधना करना, पूजा करना, भक्तों के संग में भागवत सुनना, भक्तों के संग में धाम में रहना, तो चारों के अंदर भक्तों का संग मुख्य है। तो भक्त के संग की, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, ये इस्कान की स्थापना प्रभुपाद ने भक्तों के संग के लिए की है कि यहाँ भक्त आएंगे, आपस में बैठ के भगवान की कथा करेंगे, हृदय शुद्ध करेंगे, भगवान से प्रेम इनका जागृत हो जाएगा, तो संसार से बंधन संसार के अपने आप छूट जाएंगे। तो भक्तों का संग मुख्य है जीवन में। महाप्रभु ने बार बार कहा है कि भक्तों का संग दुनिया में एक ही चीज है जो अलभ्य है, जो बहुत दुर्लभ है, वो है भक्तों का संग। और जो एक चीज है जिसको कभी नहीं करना चाहिए, वो अभक्तों का संग। अभक्तों के संग से बचना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। तो भक्तों का संग सबसे मुख्य है जीवन में। हरे कृष्ण। तो आज हमारा विचार था कि हम सुबह ही हम उधर पढ़ा रहे थे, तो आजकल पांचवें स्कंद में वहां शिक्षा चल रही है, जम्बू द्वीप में जो वर्ष है उनमें कौन से भगवान के रूप की पूजा कौन भक्त करता है। तो वर्ष जम्बू, हम सब कहां रहते हैं, जम्बू द्वीप में। हमारा जो जहां हम रहते हैं वो जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीपे कौन से टाइम में रहते हैं, ये किस कौन से अवतार का समय है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार वारहा कल्पे, इसमें जो कल्प का अवतार, कल्प के अंतर्गत जो मनवंतर अवतार जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें कौन अवतार हुआ है, वारहा अवतार। हम वारहा वारहा कल्पे वेवस्वत मनवंत्रे, किस कौन से मनु के शासन में हम जी रहे हैं, वेवस्वत मनवंत्रे। कहां हम रह रहे हैं, जम्बू द्वीपे। एक जम्बू द्वीप है और छह द्वीप है, ये और छह द्वीप भी हैं, उनमें से एक जम्बू द्वीप है जिसमें हम रहते हैं। और द्वीप भी हैं, पुलकश द्वीप है, सामल द्वीप है, जिनके नाम है भागवत में। तो हम कौन से द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं, 9 वर्ष हैं जम्बू द्वीप में। उन 9 वर्षों में से हम कौन से वर्ष में रह रहे हैं, भारत वर्ष है। हम भारत वर्ष में रह रहे हैं, लेकिन 8 और वर्ष भी हैं। तो जम्बू द्वीप भारत वर्ष है, और भारत वर्ष में भी हम कहां रहे हैं, भारत खंडे। भारत वर्ष का एक टुकड़ा है, उसका नाम है भारत खंड। वो भारत खंड कौन सा है, जिसमें हम रह रहे हैं, गंगा जमुना बह रही, इसका नाम है भारत खंड। ये भारत वर्ष का एक हिस्सा है, एक भाग है। और भारत वर्ष में भी इस वक्त हम कहां रह रहे हैं, वृंदावन नगरे। हम वृंदावन नगर में रह रहे हैं, वृंदावन नगर नहीं कहेंगे, ये कहेंगे वृंदावन भगवत धाम में रह रहे हैं। तो इस तरीके से पहले हमको पता रहना चाहिए कि हम रहते का एड्रेस पूछते हैं ना लोग, तो हम तो अपनी एड्रेस पूरी बतानी चाहिए कि हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, भले घूमे पोस्टमैन जाके जम्बू द्वीप कहां है। अपनी एड्रेस दे दो भाई, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। यहां तो यहां भी देना पड़ता है ना कि भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा तालुका है, कौन सा नगर है। तो हमारा रहने का कौन से हम द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीप में। कौन से वर्ष में रहते हैं, भारत वर्ष में। तो भारत वर्ष में हम रहते हैं, ये विशेष बात है। तो आज भारत वर्ष की बात करें या उससे पहले एक वर्ष, वर्णन तो सब वर्षों का है, अभी इस वक्त तो हम इतना नहीं करेंगे, एक ही दिन आपके साथ हमको बैठना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है अभी। ये 19वां अध्याय है 5वें स्कंद का, जिसमें 2 वर्षों का वर्णन है। पहले किम पुरुष वर्ष का वर्णन है, जिसके अंदर भगवान रामचंद्र की उपासना हनुमान जी और अन्य उनके संगी करते हैं, उनकी बहुत प्रार्थना 8 श्लोकों में है। और उसके बाद 21 श्लोकों के अंदर भारत वर्ष का वर्णन है। भारत वर्ष में भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में पूजे जाते हैं, बद्री का आश्रम उनका स्थान है, नारद जी उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। और फिर नारद कैसे क्या प्रार्थना करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, भारतवर्ष के लोग कितने महान हैं और भारतवर्ष में जन्म लेना कितना सौभाग्य की बात है कि देवताओं भी उनकी चर्चा करते हैं, ये दूसरा इस पांचवें स्कंद के 19वें अध्याय का विषय है। तो हम आज 8 श्लोक पहले वाले पढ़ते हैं, किम पुरुष लोक के। ठीक है, ठीक है भाई, हरे कृष्ण। तो जी किम पुरुष लोक, अब ये लोक कहां है ये भी आपको बता दे। एक लोक केवल दिखता है आंखों से, भारतवर्ष, बाकी जो वर्ष है वो हमारे आंखों से अदृश्य है, उनको हम देख नहीं सकते हैं, वो सूक्ष्म है अथवा हमारी भौतिक आंखों से परे है। इन वर्षों का वर्णन तो खर्च भारत वर्ष केवल दिखता है और कोई वर्ष दिखता नहीं है आंखों से, वहां हम इस शरीर से जा भी नहीं सकते हैं। तो उन सर उन वर्षों में ये सब लोग कैसे रहते हैं, तब लिखा ऐसे है कि स्वर्ग में जो तप यज्ञ दान करके जो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, जब स्वर्ग में उसका भोग का समय समाप्त होता है तो पहले उनको इन वर्षों के अंदर और भी 10,000 साल तक सुख मिलता है। इसलिए इन सारे लोकों को भारतवर्ष को छोड़कर भौम स्वर्ग बोलते हैं, भौम स्वर्ग। भौम स्वर्ग का मतलब धरती के ऊपर ये स्वर्ग है, ये जितने भी लोक हैं भारतवर्ष को छोड़कर ये सारे पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है, इसको कहते हैं भौम स्वर्ग। और एक पृथ्वी के नीचे भी स्वर्ग से ज्यादा सुख है, उनको कहते हैं बिल्व स्वर्ग। क्या कहते हैं? बिल्व स्वर्ग। बिल का मतलब जैसे चूहा बिल में रहता है ना, तो बिल्व का मतलब जो धरती के नीचे जो सूतल लोक है, तलातल लोक है, तो बलि महाराज जहां रहता है सूतल लोक में, उसमें इंद्र से ज्यादा वैभव है। उधर उधर किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है किसी को, तो वो लोग उनको कहते हैं बिल्व स्वर्ग। तो अब कितने स्वर्ग हो गए? एक स्वर्ग हो गया जो जहां इंद्र रहता है, वो तो स्वर्ग लोक है। एक भौम स्वर्ग है जिसमें भद्र वर्ष आता है, हरि वर्ष आता है, केतुमाल वर्ष आता है, कुरु वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष आता है, रम्यक वर्ष आता है, इलावर्त वर्ष आता है, किम पुरुष वर्ष आता है। तो ये सब वर्ष कहां क्या है? भौम स्वर्ग है, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है। 10,000 साल तक यहां स्वर्ग से आए हुए जीव जीते हैं, कोई दुख नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं। एक बच्चा जन्म होता है अंतिम साल में, एक लड़के को जन्म देते हैं, फिर चले जाते हैं अपने आगे की योनि में जहां उनको जाना। लेकिन भारत वर्ष विशेष है, तो ये वर्ष दिखते नहीं है, ये बात है। तो आज हम कौन से वर्ष का वर्णन सुनेंगे? किम पुरुष वर्ष। कौन सा वर्ष? किम पुरुष का अर्थ क्या है? किम पुरुष, क्या तुम पुरुष हो? इसका मतलब वहां के लोग लगते हैं जैसे मानव हैं, लेकिन थोड़े से मानव से भिन्न हैं। तो इसलिए उनके लिए शब्द किम पुरुष, क्या आप पुरुष हो? तो जैसे जैसे वन में रहने वाले मानस है, उसको कहते हैं वन मानस। क्या कहते हैं? वन मानस। तो असल में जैसे वन मानस है ना, ये बानर का अर्थ बंदर नहीं होता है संस्कृत में, संस्कृत में वानर का अर्थ बंदर नहीं है, वानर का अर्थ है वनस्पति खाने वाला, वन में विचरण करने वाला। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे, ये फल फूल खाने वाला और वन में विचरण करने वाला। तो वानर बंदर नहीं कहे, वानर का मतलब है गिरिवासी, वनवासी, जो पर्वतों के ऊपर रहते हैं और जो वनों में रहते हैं उनको कहते हैं वानर, क्योंकि बंदर नहीं है। हनुमान जी जो वेद पाठ कर सकता है वो, और बलि महाराज जो बाली है वो संध्या वंदन करता था रोज जाके, तो ये बंदर तो नहीं है इनका, जो ये वानर है, वनस्पति और वनवास और गिरिवासी है। पूरा किष्कंधा को जाके देखेंगे तो पर्वत ही पर्वत है, ये गिरिवासी हैं, ये पर्वतों के ऊपर रहने वाले और जंगलों में रहने वाले हैं, तो इनको गिरिवासी और वनवासी कहते हैं, वनस्पति चरने वाले। संस्कृत में वानर का अर्थ बांदर नहीं है, ये बड़े विद्वानों का मानना है। तो ये किम पुरुष वर्ष में वानर वनस्पति खाने वाले, वन में विचरण करने वाले, क्योंकि वो शब्द लिखा है बनो कसाम मतलब वन में रहने वालों से भगवान आपने मित्रता कर ली। हम बड़े विद्वान भी नहीं है, बड़े महान पुरुष भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, इतने सुंदर भी नहीं है, धन भी नहीं है हमारे पास, विद्या भी नहीं है, फिर भी आपने हमको मित्र बना लिया। ये सुग्रीव का वचन है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये श्लोक सुग्रीव का है। इसका मतलब सुग्रीव भी वहां हनुमान जी के संग में किम पुरुष वर्ष में निवास करता है। तो आइए कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं। किम पुरुष वर्षे भगवतम पुरुष आदि पुरुषम लक्ष्मण अगर्जम सीता सीता अभिरामम रामम। अब ये शब्द कितने सुंदर हैं, देखो जो किम पुरुष वर्ष है वहां आदि पुरुष भगवान, उनके लिए उनका नाम पहले नहीं लिया है, उनका नाम लक्ष्मण अगर्ज के नाम से लिया है, लक्ष्मण के बड़े भाई। भगवान को कैसे हम पुकारेंगे जो भगवान को बड़ा अच्छा लगेगा, यशोदा नंदन कहेंगे तो अच्छा लगेगा, नंदनंदन कहेंगे तो अच्छा लगेगा, गोपीजन वल्लभ कहेंगे तो अच्छा लगेगा, कृष्ण कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा चाहता है कि किसी भक्त के नाम के साथ उसका नाम लेंगे तो उसको अच्छा लगता है। भगवान को हमेशा भगवान के भक्त, जिससे भगवान का बहुत स्नेह है, उसके साथ नाम लेना चाहिए। और भगवान के भक्त के पास में खड़े होंगे तो भगवान को दिखाई दे देंगे। भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गरुड़ स्तंभ के पास क्यों खड़े होते थे, अंदर क्यों नहीं जाते थे? एक तो पहला भाव यह कि अंदर जाने से उनको भाव आ जाता था कि वो भगवान जगन्नाथ को मोर पंख पहना हुआ हाथ में बांसुरी लिए देखते थे तो मूर्छित हो जाते थे, सब लोग परेशान हो जाते थे। ये बाहर की बात है, सिद्धांत ये है कि गरुड़ के पास खड़े होने से भगवान का तो दृष्टि गरुड़ के ऊपर होती है, अपने वाहन को पहले देखते हैं, उनका भक्त तो गरुड़ है ना, तो जो गरुड़ के पास खड़ा होगा उसको तो भगवान पहले देख लेगा कि कौन आया है, जो आगे आगे आएगा वो थोड़ी दिखेगा। तो हमेशा भगवान के भक्त, जैसे प्रभुपाद जी का आसन प्रायः मंदिर में दूसरे तरफ होता है, तो भगवान की नजर तो हमेशा अपने भक्त के ऊपर होती है, जो उनके पास खड़े होंगे वो भगवान को पहले दिखाई देंगे, जो आगे धक्का मुक्की करेंगे वो भगवान दिखाई नहीं देंगे, देखते नहीं है, जो आगे घुसते हैं उनको भगवान देखते बहुत कम है। जो भगवान के किसी महान भक्त के पास खड़े होते हैं, गरुड़ के पास, हनुमान के पास, अपने मंदिरों में प्रभुपाद जी के पास, वो भगवान को पहले दिखाई देता है। तो भगवान की प्रार्थना जब भी करनी हो तो किसी भगवान के भक्त को पहले आगे करके फिर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो यहां सुखदेव महाराज की शैली क्या है, कहते हैं लक्ष्मण अगर्जम, जो लक्ष्मण के बड़े भाई हैं, और लक्ष्मण को कहेंगे तो क्या कहेंगे, रामानुज। लक्ष्मण का नाम क्या है और हमारा नाम क्या है, कामानुज। हम काम के छोटे भाई हैं। काम का मतलब भोग इच्छाएं दुनिया के अंदर, तो हम सब हैं कामानुज। नहीं मिलेगा अगर कुछ तो क्रोध आ जाएगा, क्रोध का नाम है कामानुज। क्रोध को क्या कहते हैं, कामानुज। क्रोध की संस्कृत भाषा में कामानुज, काम पूरा नहीं हो तो क्रोध आ जाएगा तो काम के पीछे खड़ा होता है। राम के पीछे रामानुज होता है, राम के पीछे लक्ष्मण होता है, और काम के पीछे क्रोध होता है, तो कामानुज और रामानुज। तो लक्ष्मण अगर्जम सीता अभिरामम, कैसे वह रामचंद्र, सीता का उत्सव है, सीता उनको देखती है उनको आनंद ही आनंद मिलता है। तो भगवान राम सीता के आंखों का उत्सव है, आंखों का आनंद है। सीता अभिरामम, सीता को बड़ा आनंद देते हैं। क्या नाम है, फिर लिखा है रामम। तो किम पुरुष में, किम पुरुष वर्ष में आदि पुरुष भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बड़े भाई सीता को आनंद देने वाले रहते हैं। तो क्यों रहते हैं वहां, वहां क्यों रहते हैं, तत्चरण समीक्षा धीरतः परम भागवत हनुमान। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके चरणों में बड़ी आसक्ति है परम भागवत हनुमान को। क्योंकि वो किसके वश में कौन रहते हैं? हनुमान जी रहते हैं और उनके सारे संगी साथी रहते हैं। तो जहां किम पुरुष रहते हैं, किम पुरुष भी जैसे गंधर्व लोक है, ऐसे किम पुरुषों का अपना एक लोक है। तो किम पुरुष वनवासियों जैसे हैं, तो वहां किम पुरुष में क्योंकि हनुमान रहते हैं इसलिए, और हनुमान को भगवान राम के चरणों में बहुत अति प्रगाढ़ प्रेम है। शब्द क्या है? सनिकृष। सनिकृष मतलब सम्यक रूप से आकर्षित है। किसमें? भगवान के चरणों के अंदर अभिरित है, उसके अंदर रति है, बहुत प्रेम है। किसका? महा परम भागवतो हनुमान। हनुमान के लिए तीन शब्द बोल लिए, परम भागवत हनुमान। इसका मतलब हनुमान कैसे भक्त हैं? परम भागवत हैं। परम भागवत का मतलब उत्तम कोटि के भागवतों में आते हैं। उत्तम कोटि के भागवत परम भागवत हनुमान रहते हैं। बोला अकेले रहते हैं? नहीं, सह किम पुरुष ही, और वहां बहुत सारे किम पुरुष रहते हैं उनके संग में, वो वहां रहते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में बहुत बड़ी अनुरक्ति है, आसक्ति है। और करते क्या है? अवृत भक्ति उपासते। अवृत, अवृत का मतलब कभी न रुकने वाली, निरंतर। अवृत मतलब निरंतर, वो निरंतर भगवान रामचंद्र की भक्ति से उपासना करते हैं। तो ये पहला श्लोक है कि पुरुष वर्ष में आदि पुरुष भगवान लक्ष्मण के बड़े भाई सीता के आंखों के उत्सव प्रेम की मूर्ति श्री रामचंद्र जी रहते हैं, वहां महाभागवत हनुमान जी भगवान के चरणों में निरंतर भक्ति किम पुरुषों के संग में करते हैं। ठीक है, ये पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक में है क्या कहते हैं वहां? दूसरा श्लोक, और वहां कौन है विशेष व्यक्ति? एक का नाम है आर्षिसेनेन सह गंधर्वैः अनुगीयमानं परम कल्याणं भारत भगवत कथा। वहां एक विशेष व्यक्ति है, उसका नाम है अर्षिसेन। तो जहां हनुमान जी रहते हैं, हनुमान तो भगवान के दास भाव में, तो वहां का कोई अधिपति होना चाहिए। तो किम पुरुष वर्ष में अधिपति जो है वो अर्षिसेन है। अरिष्टिन वहां के एक व्यक्ति का नाम। जैसे जैसे एक वर्ष है जिसके अंदर अर्यमा वहां का अधिपति है, वो पितृ लोग वहां रहते हैं, तो पितरों का अधिपति अर्यमा है। तो यहां अरिष्टिनेम है, तो अरिष्टिनेम है, तो और उधर कौन है? बोला बहुत सारे गंधर्व लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? अनुज्ञा। वो पहले जो शास्त्रों में भगवान की प्रार्थनाएं हैं, अनु शब्द लिखा है कि गंधर्व अपनी मर्जी से नहीं गाते हैं, कोई अपने ही गीत नहीं बनाते हैं। जो वेदों में भगवान की महिमा के गीत लिखे हैं उन्हीं को आवर्ती करके। अनु का मतलब पहले साधु संतों ने जो भगवान की महिमा गाई है उन्हीं को फिर गाते हैं। तो ऐसे जैसे हमारे आचार्य ने गीत लिखे हैं उन्हीं को आवर्ति करना, उसको बोलते हैं अनुकर। तो अनुगायंती, हाँ, अनुगीयमानं परम कल्याणं। गाते क्या है? कि भगवान सबके लिए परम कल्याण करे। भगवान कैसे हैं? परम कल्याणकारी है। किसके लिए परम कल्याणकारी है? सबके तो लिए हैं, लेकिन भर्तु भगवत कथा। भर्तु का मतलब क्या होता है? भगवान दास। जैसे एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, तो वो भृत्य शब्द है कि वो जो भृत्य वो ऐसी सुंदर भगवान की सबके मंगल की कामना करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं और भगवान की कथा करते हैं, दास्य भाव से भगवान के गुणगान करते हैं और समोपश्नोती, और उनको हनुमान जी बहुत सम्यक मतलब पूर्ण ध्यान से श्रुणोति सुनते हैं तो वहां क्या चलता है, वहां गंधर्वों के गान चलता है। कौन सा गंधर्व गान करते हैं, जो वेदों में भगवान की स्तुति की गई है, जो भगवान के दास भाव के भक्त हैं, जो भृत्र भक्त हैं, वो भगवान की महिमा गाते हैं ना जब, तो उसको हनुमान जी बड़े ध्यान से सुनते हैं। और क्या करते हैं, और हनुमान जी स्वयं स्वयं चेदम गायति, और स्वयं भी भगवान की महिमा गाते हैं। तो ये भगवान के दो भक्ति के अंग हनुमान जी के यहां सुनने को मिलते हैं। पहले तो वो सुनते हैं, फिर स्वयं भी भगवान की महिमा गाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शिक्षा है, पहले सुनना चाहिए फिर भगवान की कथा सुनना चाहिए, फिर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो कौन उधर गाता है, गंधर्व गाते हैं। क्या गाते हैं, जो पहले शास्त्रों में भगवान की महिमा का वर्णन किया है। कौन से प्रकार की कथा करते हैं, क्योंकि यहां सारे भक्त दास भाव के हैं, तो भृत्य भगवत कथा होती है, दास भाव की कथा होती है। ऐसे लक्ष्मी जी जहां रहती है, जहां भगवान कामदेव के रूप में रहते हैं, वहां लक्ष्मी जी माधुर्य भाव से प्रार्थना करती है, कांत कहके कहती है, आप हमारे कांत हैं भगवान, आप हमारे पति हैं, आप ही केवल पति हैं। लक्ष्मी जी की प्रार्थना ऐसी है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो भगवान की प्रियसी है, माधुर्य भाव में है, तो उनका भाव जो है दूसरा है, तो वहां प्रार्थना दूसरे प्रकार की है। और यहाँ क्यों पुरुष रूप वर्ष में सारे दास रहते हैं, भगवान के सेवक हैं, तो उनकी प्रार्थना भ्रातृ भगवत कथा है, वो तो भगवान की दास भाव से कथा करते हैं। और हमारे लिए तो महाप्रभु ने कहा है, हमको दास भाव में सदा बना रहना चाहिए, ये सबसे सेफ भाव है, ये सबसे बिना खतरे वाला, इसमें कोई भय नहीं है, निर्भय होके दास जीता है, क्योंकि भगवान उसकी देखभाल करते हैं। फिर जैसे ही अपना स्वरूप प्रकट हो जाए, उस भाव को भले अंगीकार करे, लेकिन जीते जी दास भाव में ही रहना चाहिए। हमारे सारे आचार्यों ने हमेशा दास भाव में ही भगवान की प्रार्थना की है, तो दास भाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये प्रार्थना हनुमान जी के लिए हमारे लिए। तो अब हनुमान जी स्वयं क्या गाते हैं, ये तीसरा मंत्र है। तीसरे मंत्र में हनुमान जी स्वयं राम जी की कैसे प्रार्थना करते हैं, तो इसको आप सुनिए, और कहना चाहें तो कह सकते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमो आर्य लक्षण शीलवर्ताय नमः उपशिक्षात आत्मना उपाशितः लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्राह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। बड़ा अच्छा है, कितना अच्छा है कि हनुमान जी अपने मुख से भगवान राम को ये प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छी लगती है तभी करते हैं ना। हनुमान जी का तो भाव है कि जो भगवान राम को अच्छा लगता है वही करते हैं। भूख लगी थी, हनुमान जी एक बार सीता जी के सामने आए कि माँ भूख लगी है, कुछ फल दे दो। तो सीता जी ने बोला, मैं कुछ माता जी श्रृंगार करके सिंदूर लगा रही थी यहाँ। हनुमान जी का, ये क्या कर रही है माता जी, भूख लगी है, जल्दी फल दो। बोला, ये जहाँ लाल लगाती हूँ सिंदूर, ये राम जी को बहुत अच्छा लगता है। तो माता जी फल लेके आई, हनुमान मिले नहीं। हनुमान बोला, मिला नहीं। थोड़ी देर के बाद गया, सारे का सारा रंग लगा के वापस आ गया। बोला, ये क्या किया हनुमान। बोला, इतना लाल लगाती हूँ अच्छा लगता है, मैं पूरे का पूरा लाल होके आ गया, तो राम जी को बहुत अच्छा लगेगा। तब से हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ना शुरू हो गया, और सिंदूर पूरा लेके दुकान के अंदर सारा सिंदूर डाल के तालाब में अंदर जा गए, डुबकी लगा के बाहर आ गया, भूख भूल गया। तो क्या हनुमान को अच्छा लगता है, जो राम जी को अच्छा लगता है। तो ये प्रार्थना, कभी राम के मंदिर में जाए सीताराम लक्ष्मण के, तो ये शब्दों से प्रार्थना करें, तो ये क्या हो गया, अनुगान, कि हम बड़े परम भागवत हनुमान जी की प्रार्थना का अनुवृत्ति कर रहे हैं, तो ये भगवान को बहुत अच्छी लगेगी। अपनी तरफ से हम करेंगे वो तो नहीं, ये प्रार्थना भागवत में लिखित और हनुमान जी के मुख की प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना में शब्द क्या है, नमो भगवते उत्तम श्लोकाय। भगवान कैसे हैं, उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोक का अर्थ क्या है? वेदों के अंदर बहुत सुंदर श्लोकों से जिनकी प्रार्थना की गई है, जिन उत्तम श्लोकों से जिस भगवान की प्रार्थना की जाती है उसको उत्तम श्लोक कहते हैं। और दूसरों कहते हैं नमः आर्य लक्षण शील वर्ताय। भगवान रामचंद्र जैसे आर्य पुरुष, भद्र पुरुष, जो सभ्य पुरुष होते हैं, वैसे उनके गुण हैं और वो गुण उनमें सदा रहते हैं, कभी भी उनमें त्रुटि नहीं आती। तो भगवान शीलवान है, एक आर्य लक्षण शील वर्ता है, शील स्वभाव होता है, शील एक जो शीलता है ये बहुत अच्छा स्वभाव है। और रामचंद्र का स्वभाव कैसा है? आर्यव्रत। आर्य आर्यव्रत का मतलब जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम आर्य हो, तुम्हारे के अंदर ये अनार्य दृष्टम असर्गन, ये अनार्य जैसे विचार के तुम्हारे अंदर कहां से आए? तो आर्य का मतलब शुद्ध विचार, जिसके भगवत प्राप्ति के रास्ते में चलने वाला। तो भगवान विग्रहवान, श्री राम विग्रहवान धर्मो, भगवान श्री रामचंद्र धर्म का मूर्ति है, धर्म के जो भी नयन है वो उनके अंदर रहते हैं, ऐसे वो सद्गुण संपन्न है कि किसी और के गुणों को परखना हो तो राम जी कसौटी की तरह है जिसके ऊपर सोने को परखा जाता है। सोने को परखने के लिए पत्थर कसौटी होती है कि सोना कितना अच्छा है कि नहीं है, ऐसे किसी का संसार के अंदर चरित्र परखना है तो राम जी का चरित्र कसौटी है। तो यहां जो ये शब्द है साधुवाद निक्षणाय, साधुवाद निक्षणाय का मतलब है साधु कहते हैं कि किसी के अच्छे चरित्र को परखना है तो राम जी कसौटी है। राम जी के चरित्र के सामने दूसरे का चरित्र देखिए वैसा है कि नहीं है। तो रामचंद्र का चरित्र कभी डगमगाता नहीं है, जो कसौटी का पत्थर होता है वो कभी इधर उधर डगमगाता नहीं है, ऐसे राम जी के चरित्र में कभी भी डावाडोल नहीं होता है, इधर उधर से भटकता नहीं है बहुत। और फिर क्या है? उपशिक्षित आत्मने, वैसे इसका अर्थ है उन्होंने भगवान रामचंद्र ने शिक्षाएं ग्रहण की है, किससे? वशिष्ठ आदि गुरुओं से, उपशिक्षित अच्छी तरह से शिक्षित हुए हैं। वैसे वाल्मीकि में वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं रामचंद्र जी अपने बड़ों का संग करते थे, जो वयवृद्ध होते थे, जो ज्ञान वृद्ध होते थे, जिनमें ज्ञान अधिक होता था, जिनकी आयु अधिक थी, जिनका अनुभव अधिक था, उनका संग करते थे हमेशा। तो ये शिक्षा ग्रहण की गुरुओं के संग में, और अधिक जो वयोवृद्ध थे, आयु में बड़े थे, ज्ञान में बड़े थे, ऐसे सज्जन पुरुषों का ऐसा संग किया कि कोई कब थोड़ी अच्छाई करते थे, कोई कर ले भगवान की को, और श्री रामचंद्र कभी भूलते नहीं थे, थोड़ा भी उनकी सेवा कर ली, अच्छाई कर ली, कभी नहीं भूलते थे, और गलती कोई करे उसको कभी याद नहीं करते थे, अपने भक्तों के अवगुण को कभी याद नहीं करते थे, गुण को कभी भुलाते नहीं थे, ऐसा उनका अद्भुत शिक्षा और चरित्र था। लोक उपासित लोकाया, सारे लोग उनकी उपासना करते थे अथवा सारे लोगों के द्वारा पूजित थे। और इसका दूसरा अर्थ निकालते हैं जिनके लिए अपनी प्रजा ही पूजित थी, जैसे अपने पुत्र के लिए माता पिता सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं कि ये अच्छा इंसान बने, ऐसे रामचंद्र अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान उपासना करके, जैसे बच्चे को कैसे श्रृंगार कराती है माँ, कैसे उसकी जैसे पूजा करती है बच्चे की, घर में कपड़े पहनाना, रोटी खिलाना, हर चीज का ध्यान रखना, ऐसे रामचंद्र अपनी प्रजा के हर एक नागरिक का ऐसा ख्याल रखते थे। इसका दूसरा अर्थ ये निकलेगा उपासित लोकाय, जितनी अपनी प्रजा थी उनसे प्रेम पूर्वक उनके पालन पोषण के कार्य को करते थे, जैसे पिता माता अपने बच्चों का करते हैं। और सारी प्रजा बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ, प्रजा क्या इंसान क्या पशु पक्षी भी राम से प्रेम करते थे। तो लोका उपासित लोकाय ब्राह्मण देवाय, एक तो वो ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे और ब्राह्मण उनकी हमेशा पूजा करते थे। तो दोनों तरफ से ब्राह्मण उनकी पूजा करते थे और वो ब्राह्मणों को सम्मान देते थे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते थे। महापुरुषाय, भगवान महापुरुषाय का मतलब जिसकी पूजा पुरुष सूक्त से की जाए। पुरुष सूक्त में पूजा कैसे होती है भगवान की? भगवान सृष्टि करता है, भगवान पालन करता है, सहस्र श्रखा पुरुषा, ये जो पुरुष सूक्त है उससे जिसकी प्रार्थना की जाए उसको कहते हैं महापुरुषाय। जो महापुरुष लोग हैं तो भगवान की पूजा पुरुष सूक्त होती है। महाराजाय, और भगवान रामचंद्र राजाओं के राजा हैं, आदि राजा हैं, अधिराजा अधिराज हैं, और हनुमान जी कहते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं। यहां तीन श्लोक पूरे हुए, टाइम क्या हुआ? 6:10 हो गए, तो बहुत है। हनुमान जी की प्रार्थना को याद रखो। इसके बाद दूसरा श्लोक है, वो एक श्लोक ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। चलो पढ़ लें एक श्लोक, नहीं समाप्त करें, यहां करें एक श्लोक और पढ़ लें। यद्तद् विशुद्धानुभव मात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्त गुण विवस्थितं प्रत्येक प्रशांतं शुद्ध्योपलम्भनं हयनाम रूपं निर्धम प्रपद्ये। हनुमान जी कहते हैं भगवान के लिए जो शब्द लिखे हैं, न तद विशुद्ध अनुभव मात्रम एकम, विशुद्धम अनुभव मात्रम। भगवान राम को कौन जान सकता है? पहले तो वो विशुद्ध हो जाए, विशेष शुद्ध हो जाए, और फिर शुद्ध होने के बाद उसको अनुभव हो जाए। इसका मतलब उसको अनुभव हो जीवन में, वो उस भगवान राम को समझ सकते हैं। क्योंकि वैसे वो दिखते नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों प्रत्यक्ष नहीं है? क्योंकि प्रकृति के गुणों से परे है, वो प्रकृति के गुणों से परे हैं। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, तीन गुणों से परे तो भगवान के भक्त भी होते हैं? भगवान के भक्त भी तीन गुणों से परे होते हैं? भगवान के भक्त तो तीन गुणों से परे होते हैं भक्ति करके, लेकिन भगवान राम स्वतेजसा, वो तो अपने ही प्रकाश से तीन गुणों से परे हैं, उनके सामने माया आ ही नहीं सकती। तो स्वतेज से शब्द है कि वो अपने तेज से प्रकृति के गुणों से परे हैं। तो वो कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं, वो सामने दिखते नहीं है। तो फिर किसको दिखेंगे? बोला जो विशुद्ध अनुभव जिसको होगा, जिसके हृदय में, किसको दिखेंगे? जिसके ऊपर भगवान स्वयं कृपा करेंगे। तो भगवान स्वयं कृपा किसके ऊपर करते हैं? जिन्होंने अपने अंदर को शुद्ध किया है, जिन्होंने भक्तों के संग में अनुभव किया है, उसको दिखते हैं। और फिर तीसरी लाइन में लिखा है सोचे ध्वस्त गुण व्यवस्थान, माया के गुण उनके नजदीक भी नहीं आए, वो तो ना उनके सामने खड़े नहीं होते हैं, प्रत्येक दिखते नहीं है सामने आंखों से। प्रशांतम, भगवान प्रकृष्टेन रूपेन शांत, पूर्ण शांत है, कोई उनको विचलित कर नहीं सकता है, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कहते हैं कि भगवान को राम रावण के ऊपर बाण चलाना तो क्रोध करना था, तब क्रोध आ नहीं रहा था, तो भगवान ने थोड़ी देर के लिए क्रोध तुम आ जाओ, तुम नहीं आओगे तब तक तो बाण चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ऐसे हैं कि क्रोध आता ही नहीं है उनको, उनका स्वभाव में ये है ही नहीं चीज। और रावण को किसने कहा कि तुम्हारे को रूप बदलने की जब वरदान मिला हुआ है तो तुम साधु क्यों बन जाते हो, राम के रूप में चले जाओगे? बोला राम के रूप में जाने के बाद मैं बदमाशी करना ही भूल जाऊंगा, फिर तो मैं बदमाशी कर ही नहीं सकता हूं ना। वो रूप ऐसा है कि उस रूप में आने के बाद बुराई मन में आएगी ही नहीं। चित्रकूट के अंदर जब भरत के संग में अयोध्यावासी गए तो राम से मिलने के पहले जो वहां जो आदिवासी लोग भील कोल रह रहे थे ना, वो कह रहे थे सुनो सुनो भाई, ये थोड़ा फल फूल लाए हैं खा लो। तो अयोध्यावासी देखने लगे, बोला देखो मत, हम जंगल वाले हैं, रास्ते में जाते हुए लोगों को लूटते हैं, खिलाते नहीं हैं, सबको लूट के खाते हैं। ये आप हमारे चरित्र में जो परिवर्तन देखते हैं ना, यहाँ वो राम जी आए हैं, उनको हमने जब से देखा है तब से हमारे अंदर से दूसरों को लूटने का भाव चला गया है, अब तो हम वन से जाके फल फूल ला के लोगों को खिलाते हैं रास्ते। ये जीवन में परिवर्तन आ गया है, राम जी के केवल दर्शन मात्र से हमारा जीवन बदल गया है। तो ये भगवान के दर्शन का बड़ा लाभ है कि भगवान किसी को दिख जाए अथवा भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। तो यहाँ जो ये शब्द लिखा है कि वो भगवान कैसे परम शांत है, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता है, उनका स्वभाव सदा, जैसे भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी उनको क्रोध में देखा ही नहीं गया है, क्रोध आता ही नहीं, वो तो मुस्कुराते रहते हैं हमेशा के लिए। एक महाभारत में कथा आती है क्रोध की, याद है किसी? एक बार सात्यकी बलराम जी और कृष्ण जंगल में चले गए, जंगल बहुत भयानक था, बोला रात को एक आदमी को चौकीदारी करनी पड़ेगी, दो आदमी सो के आराम करेंगे। तो सात्यकी ने कहा पहले मैं चौकीदारी करता हूँ। दो सो गए, एक बड़ा राक्षस आया, कहा सात्यकी सुनो इन दोनों को मैं खा जाऊंगा, तुमको छोड़ दूंगा। सात्यकी ने क्या कृष्ण को बलराम को खाएगा, डरता नहीं है मैं सात्यकी हूं। सात्यकी ने अपना धनुष उठाया, लड़ाई किया, दो घंटे लड़ा, मरा नहीं, राक्षस भाग गया, सात्यकी थक गया और कहा बलराम जी उठो तेरी टर्न आ गया, तुम उठ के चौकीदारी करो, और खुद सो गया। बलराम जी उठा, चौकीदारी किया, वही राक्षस फिर आया, कहा इन दोनों को खाऊंगा, तुमको छोड़ दूंगा। बलराम बोला तेरा दिमाग खराब है, कृष्ण को खाएगा, मेरे मित्र सात्यकी को खाएगा, जानता नहीं है बलराम। बलराम ने गदा उठा के मारा, दो घंटे लड़ाई हुई, मरा नहीं, राक्षस भाग गया, बलराम जी थक गया, सो गया, कृष्ण को उठाया कि उठ जा कृष्ण, अब तुम्हारी बारी है। कृष्ण उठ के खड़ा हो गया, वो फिर राक्षस आया बदमाश, कहा सुनो सुनो कृष्ण मैं तुम्हें जानता हूँ, ये दोनों को खाने तो तुम्हें छोड़ दूंगा। कृष्ण बोला है पागल, तुमने कभी किसी को खाया है? पागल है तुम कोई, नहीं सुनते नहीं, अरे सुनता, अरे पागल है चार। वो राक्षस छोटा होने लगा, कृष्ण और हंस, उसका मजाक उड़ा के हंसने लगे, वो और छोटा हो गया, कृष्ण ने उसको पकड़ के ऐसे जेब में रख दिया। सुबह हुई तो उठे तीनों, तो उठ के सात्यकी कहता है बहुत भयानक राक्षस था, दो घंटे में लड़ा भाग गया, मैं उसको मार नहीं सका। बलराम जी का तुमने मुझे बताया नहीं, उठाया क्यों नहीं? बोला तेरे को उठाया तब तक मैं थक गया था, सो गया। बलराम जी वो मेरे पास भी आया, दो घंटे मेरे से लड़ा, मुझे परेशान किया। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते हैं कौन था? ये था। सब बोलते हैं हाँ हाँ ये था। बोला ये क्रोध है, ये जब आए और तुम अगर जोर से बोलोगे तो ये बड़ा होता जाएगा, कभी नहीं मरेगा। ये जब सामने आए तो जोर जोर से हंसो, बोले मूर्ख तो क्या करेगा, तो ये छोटा हो जाएगा। ये बड़ा राक्षस क्रोध है, ये आए तब आप एक क्रोध करे तब आप चुप हो जाओ, आपने अगर जोर से बोलना शुरू किया तो कभी मरेगा नहीं। वो बलराम जी ने कहा मुझसे भी नहीं मरा, सात्यकी से भी नहीं मरा, भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उसको मारा? केवल हंस हंस गया, अरे मूर्ख जा तू क्या करेगा, वो बेचारा इतना छोटा हो गया। तो क्रोध के ऊपर ये ऐसे ये प्रशांत है, ये भगवान की मूर्तियां प्रशांत है, इनको क्रोधित नहीं किया जा सकता। प्रशांत आया भगवान कैसे है? बहुत प्रशांत है। सुधी उपलम्भा, उनको कौन पा सकता है? जिसका हृदय शुद्ध है। प्रभुपाद ने लिखा है जो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा उसको भक्त, क्या भगवान दिखते नहीं है ना, प्रतीक नहीं है, दिखते नहीं है तो फिर कैसे मिलेंगे? प्रतीक है, दिखते नहीं है, प्रतीक है तो कैसे मिलेंगे? बोला जिसका हृदय शुद्ध हो जाएगा उसको मिल जाएंगे। हय नाम रूपम, उनका कोई नाम रूप नहीं है, ये मायावादी उसके ऊपर और कुछ बोलेंगे। प्रभुपाद ने इसका अच्छा उदाहरण दिया है, प्रभुपाद लिखते हैं जैसे हमारी आत्मा और हम अलग हैं, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा भाई मैं, मेरा नाम ये है और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं भाई राजस्थान में रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ। ऐसे कोई राम जी से पूछेगा तो वो क्या कहेंगे? वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ कि मैं अमेरिकन हूँ, ऐसा तो नहीं कहेंगे, उनके अंदर बाहर में कोई अंतर तो है नहीं। तो उनको कोई भी भौतिक उपाधि नहीं है, हम सबको भौतिक उपाधि है, उसको कोई भौतिक उपाधि नहीं है। जैसे परमात्मा, भैया परमात्मा छोड़ो, भगवान का ये चंद्रमा, ये सूर्य खड़ा है, अब सूर्य ये कभी अब कोई इसे पूछे कि भाई तुम कहाँ के हो तो ऐसे थोड़ी कहेगा मैं हिंदुस्तान का हूँ, हाँ या का मैं अमेरिका हूँ, वहां तो मैं सूर्य हूँ, सूर्य मंडल में रहता हूँ तो मैं उसमें सूर्य हूँ, तो मैं सूर्य हूँ। तो भगवान परमात्मा के रूप में उसे, आपके हृदय में परमात्मा है वो दूसरे हैं, मेरे हृदय में दूसरे हैं क्या? एक ही है, तो भगवान को कोई उपाधि नहीं, उसका कोई नाम रूप नहीं है। क्या भौतिक कोई भी नाम रूप नहीं है, हमारा भौतिक नाम और रूप है उनका नहीं। निरहम, निरहम का मतलब है, एक तो निरहम का मतलब है कि भगवान का शरण लेना चाहिए बिना अहंकार के, मन में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, तभी भगवान का शरण लिया जा सकता है। और निरहम का अर्थ यह भी है कि भगवान कैसे हैं, निरहम है, निश्चित रूप से वो अपने स्थिति में हमेशा रहते हैं, उससे कभी विचलित नहीं होते हैं। ये इसके ऊपर तो बहुत दो तीन आचार्यों ने ठीक का निरहम शब्द के ऊपर लिखी है, प्रभुपाद जी ने भी इसके दो तीन अर्थ लिखे हैं, लेकिन इसके तात्पर्य में एक बात लिखी है सीधी सी पहले ये कि राम जी भगवान विष्णु के अवतारी हैं, तो फिर इसके ऊपर संदेह किया जा सकता है कि इनका वाहन गरुड़ नहीं है, हनुमान जी है, इनके चार हाथ नहीं है, चतुर्भुज रूप नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म नहीं है। तो इन चीजों को लेकर ये श्लोक कहता है कि ये चीजें नहीं है, फिर भी भगवान माया से परे और प्रशांत है और साक्षात परम पुरुष भगवान है। ये चीजें नहीं है तो भी उनका वाहन हनुमान का गरुड़ नहीं है, हनुमान है, फिर भी ये भगवान है, ये बात इस श्लोक से सिद्ध होती है। चक्रवर्ती बात सीधा ही कहते हैं, लोग कुछ ऐसे कह सकते हैं कि आपका गरुड़ वाहन नहीं है, चार हाथ नहीं है, चार आपके हाथ में शंख चक्र पद्म गदा नहीं है, तब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, परम पुरुष भगवान है, परम शांत है और वो भौतिक प्रकृति से परे है, इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता है, तो फिर नहीं देखा जा सकता है। नहीं नहीं, देख सकते हैं, कौन देख सकते हैं, जिसको वो स्वयं वर्ण कर ले अथवा जिसके सामने वो स्वयं प्रकट होना चाहिए, चाहे वो वही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है। वो ये श्लोक प्रभुपाद जी ने भी उद्धृत किया है और विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखते हैं, वर्ण जिसको स्वयं भगवान वर्ण करे वही उसको वर्ण कर देख सकता है, सब नहीं देख सकते, जिसको वो अपने आप दिखाना चाहे वो उसको देख सकता है। तो यहां श्लोक, इसके बाद वाला श्लोक बहुत भारी श्लोक है पांचवा, तो उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उस श्लोक में लिखा है कि भगवान श्री राम का अवतार मर्त्य अवतारम, पहला शब्द है मर्त्य अवतारम। मर्त्य कहते हैं मानव को, मानव को मर्त्य इसलिए कहते हैं कि उसका जन्म और मृत्यु होती है, तो इसलिए हमको कहते हैं मर्त्य। तो भगवान राम का कैसा अवतार है, बोला मर्त्य अवतारम, इसका मतलब मानव जैसा अवतार है। बोला ऐसे क्यों लिखा है मर्त्य अवतारम, बोला इसलिए भगवान ने मानव के रूप में अवतार लिया कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रावण को केवल मानव ही मार सकता था और कोई नहीं मार सकता था, ये वरदान के अंतर्गत था। और फिर लिखा है कि क्या भगवान ने अवतार रावण को मारने के लिए किया क्या, बोला नहीं, असुर के वध के लिए केवल अवतार नहीं लिया था, मर्त्य शिक्षितम, जो मर्त्यु लोक में मानव रहते हैं उनको शिक्षा देने के लिए अवतार लिया था। तो भगवान ने कौन सी शिक्षा हमको दी है, ये बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री राम की क्या शिक्षा है, हनुमान जी की कहते हैं भाई भगवान ने जो शिक्षा दी किसने उसको देखा होगा या सुना होगा, हनुमान जी ने जो भगवान के संग में सदा रहते हैं, तो हनुमान जी अगर कहे कि ये राम जी की शिक्षा है तो प्रमाणिक है। तो राम जी की शिक्षा क्या है, ये बड़ी अद्भुत शिक्षा है, ये शिक्षा मानवों के लिए है। प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं कि राम जी का अवतार वैसे भी परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कर्तम, भाई साधुओं की रक्षा के लिए था और असुरों के संग, लेकिन साधुओं की रक्षा केवल दर्शन दे के करने के लिए नहीं था, उनको शिक्षा भी देनी थी। भाई क्या शिक्षा देनी थी, प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले उनको शिक्षा, राम जी की शिक्षा के दो विभाग है, एक धर्म का विभाग है और एक प्रेम का विभाग है। उन्होंने धर्म की शिक्षा दी गृहस्थों को और प्रेम की शिक्षा दी भक्तों को। धर्म की शिक्षा दी गृहस्थों को के जीवन में अगर आप स्त्री विवाह पुरुष से करेगी, पुरुष स्त्री से विवाह करेगा, घर गृहस्थी में जाओगे तो घर के अंदर हमेशा परेशानी आएगी, कभी दुख आएगा, कभी संकट आएगा। तो इसलिए एक बार जीवन में अगर गृहस्थ में प्रवेश करे, स्त्री का हाथ पकड़ लेते हो तो उसकी सुरक्षा का और सुविधा की जवाबदारी ठीक तरह से निभानी चाहिए। उसको कभी संकट आए तो उसको बचाने के लिए समुद्र पार जाना पड़े, रावण से लड़ना पड़े, तो भी लड़के अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन इस रास्ते में कष्ट बहुत है, लेकिन इसके ऊपर अगर गए हो तो अच्छे पत्नी होके उसकी रक्षा करना, ये धर्म की शिक्षा है। और भक्तों को प्रेम की शिक्षा ये है कि इस परपंच में पढ़ना ही मत, क्योंकि देखो मैं पढ़ा तो कितना दुख उठाया, इसलिए आप इसमें नहीं जाओ तो अच्छा है। तो दोनों के लिए शिक्षा सीधी है, ऐसे लिखा है प्रभुपाद ने, ठीक ऐसे साफ लिखा है। धर्म की शिक्षा दी है ग्रस्तों को कि बहुत अच्छा धर्म पालन करो अपना, उसमें संकट जरूर आएंगे। कोई ऐसा ग्रस्त नहीं है जिसे घर में झगड़ा नहीं हो, परेशानी नहीं हो, कष्ट नहीं हो। इसलिए ऐसी स्थिति की वजह से विवाह को तोड़ना कभी नहीं चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने तो बहुत सूक्ष्म लिखा है इन शब्दों के ऊपर, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से लिखा है, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती के पाद के समय में ग्रस्त सदग्रस्त ही हुआ करते थे, कभी भी उनके अंदर स्त्री को छोड़ने का नियम नहीं था। लेकिन अब प्रभुपाद ने देखा कि यहां तो रोज उनकी शादियां होती हैं और टूटती हैं, यहां तो इतना सख्त लिखा है प्रभुपाद ने, कोई शादी तो दो चार छह महीने बारह महीने चलती नहीं है, फिर टूटती है, फिर इधर से उधर जाती है, तो इसलिए कहे कि ये झमेले में पड़ना है तो जवाबदारी को ठीक निभाओ, नहीं तो इस तरफ जाओ ही मत। और फिर दूसरा इसके अंदर जो दूसरा श्लोक का भाव है कि भगवान ने ये दिखाया है कि सीता के हरण के कारण कितना उनको दुख हुआ, कितना संकट हुआ, कितना विलाप किए, उससे क्या शिक्षा दी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भाई पहले तो सीता का हरण हुआ ही नहीं, रावण सीता को तो ले ही नहीं गया, छाया को ले गया, वो तो माया सीता को ले गया। और भगवान राम सीता एक से हजार भी अपने अंग से पैदा कर सकते थे, वैसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं है सीता कहां गई। तो फिर ये कैसा विलाप था, बोला ये विलाप प्रेम के कारण था, इसको विप्रलंभा प्रेम कहते हैं। जो इतना अति प्रेम स्थायी भाव जब हो जाता है, तब जब बिछड़ते हैं तो उसके कारण बाहर से दिखता है दुख है, लेकिन अंदर में बहुत आनंद होता है। तो प्रेम की ऊपर का स्तर इस तरह विप्रलंबा भाव, तो ये भगवान राम ने विप्रलंबा भाव का, जैसे राधा रानी विप्रलंबा भाव में कृष्ण के लिए विलाप कर रही है, ऐसे राम जी सीता के लिए विप्रलंबा भाव में विलाप कर रहे हैं। तो ये राम जी का बाहर से दिखता है कि वो दुख है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा आनंद है, क्योंकि स्थायी प्रेम के अंदर स्थायी भाव में ही विलाप होता है। ये भाव प्रेम का स्थायी हो गया था, इसलिए उनको, और तब प्रभुपाद ने लिखा है भक्तों को बाहर से दुख भी दिखता हो, लेकिन अंदर से वो भगवान के प्रेम में हमेशा मस्त रहते हैं। शरीर में कोई पीड़ा भी हो तब भी उनको चिंता नहीं रहती है, क्योंकि भगवान के प्रेम में रहते हैं। तो ये रामचंद्र की शिक्षाएं, ऐसी आगे शिक्षा आएगी कि रामचंद्र ने धर्म का पालन कैसे किया और प्रेम कैसे निभाया। बोले धर्म का पालन ऐसे किया कि राज के अंदर एक धोबी ने कह दिया कि घर में सीता को क्यों रखा है, तो सीता का परित्याग किया, राजा के धर्म का पालन किया। और प्रेम का पालन कैसे किया, इतना अधिक प्रेम था लक्ष्मण के संग, इतना लक्ष्मण से प्रेम था कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था जब उनसे देव पुरुष मिलने आया था कि हमारी बात के बीच में जो आए उसको आप मृत्यु दंड देंगे, लेकिन राम जी ने वशिष्ठ जी के कहने के ऊपर उनका परित्याग किया, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया, क्योंकि बहुत प्रेम था उनको, लेकिन धर्म का पालन किया, गुरु जी की आज्ञा को भी मान लिया। तो ये कुछ उनकी लीला के अंतर्गत राम जी के शिक्षाएं हैं जो मानव के लिए हैं। गृहस्थी के लिए शिक्षा है, गृहस्थ में जाना हो जाओ ही मत, ये भी शिक्षा है, और धर्म का अपना पालन करना चाहिए। भक्तों को दुख भी आए तो अंदर में भगवान के प्रेम में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद दो तीन और श्लोकों के अंदर हनुमान जी प्रार्थना करते हैं कि राम जी इतने दयालु हैं कि सबको तो हाथ आते नहीं है, ना धन से आते हैं, ना कुल से आते हैं, ना जाति से आते हैं। अगर ऐसा होता तो हम जैसे किम पुरुषों को मित्र कैसे बनाते, जब हम जैसे वनवासियों को मित्र बनाया है इसका मतलब वो बड़े दयालु हैं, वो किसी के गुण दोष नहीं देखते हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कोई असुर हो या देवता हो, कोई मानव हो या पशु पक्षी हो, सबको ही भगवान राम की उपासना करनी चाहिए, भगवान सबके लिए आराध्य है। और ऐसे दयालु हैं कि अपने सारे अयोध्या वासियों को स्वशरीर ही वैकुंठ लेके चले गए, तो ऐसे दयालु भगवान का शरण क्यों नहीं लेना चाहिए। यहाँ 8 श्लोकों में हनुमान जी की प्रार्थना पूरी होती है। हमारे लिए भी कुछ शिक्षा है, यहाँ वाणी को विराम देते हैं। इसके बाद भारत वर्ष शुरू होता है, वहां भी नारद जी की बड़ी अद्भुत शिक्षा है। कवि भगवान ने फिर संजोग जोड़ा तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण बलराम की।
हरे कृष्णा। वैसे प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, आप सभी जानते हैं। आजकल प्रभु जी जो है बाहर के देश में बहुत प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे बीच में जो समय निकाल करके यहाँ जो है हमें शिक्षा दी, क्या नाम है, किम पुरुष की, तो इसलिए हम प्रभु जी का 3 बार हरि बोल करके स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, परम पूज्य सार्वभौम प्रभु जी के हरि बोल।
हेलो जगह मिलेगा, मुझे जगह मिलेगा, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
कोई जगह कहीं हो जहाँ पहले आश्रम बना है, चाहे मैन चीज जमाना हो, वो भी हम उस चीज के लिए
Thank you. Yes.